एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में हम फिर हाजिर हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी गहरी है, सोचने पर मजबूर करती है।
जी हाँ, बिल्कुल। ये है कैरन आर्मस्ट्रांग की बहुत ही प्रभावशाली किताब ईश्वर का इतिहास या अ हिस्ट्री ऑफ गॉड। ये किताब हमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीन बड़े धर्मों में ईश्वर की जो समझ है उसके 4000 साल के लंबे सफर पर ले जाती है।
और ये सफर मुझे लगता है आज के समय में समझना बहुत जरूरी है ना? हम इतनी बातें सुनते हैं धर्मों के बीच मतभेद की या फिर आस्था और विज्ञान के बीच की खींचतान की।
बिल्कुल।
तो ये जानना कि भाई जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं उसकी समझ इंसानों में खुद कैसे बनी, कैसे बदली, ये बहुत दिलचस्प है।
सही कहा। शायद इसका एक बड़ा मकसद यही है कि हम अलग अलग आस्थाओं को, उनके नजरिए को बेहतर समझ पाएं और आज की दुनिया में धर्म की क्या जगह है, क्या भूमिका है, इस पर भी सोच सकें।
हाँ, और इस गहरी खोज के लिए कैरन आर्मस्ट्रांग से बेहतर शायद ही कोई हो। उनकी अपनी कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प है।
हाँ बिल्कुल। वो पहले एक रोमन कैथोलिक नन थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया।
अच्छा
जी। और फिर वो धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की दुनिया में आ गई और आज एक बहुत बड़ा नाम है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है।
तो मतलब उन्हें धर्म को अंदर से जीने का अनुभव भी है और बाहर से एक विद्वान की तरह विश्लेषण करने की क्षमता भी। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है।
हाँ, और यही उनकी लिखाई में झलकता भी है। एक तरफ व्यक्तिगत अनुभव की संवेदनशीलता है तो दूसरी तरफ अकादमिक गहराई और तर्क।
और उनकी एक और खासियत जो मुझे लगती है वो ये कि वो मुश्किल से मुश्किल धार्मिक और दार्शनिक विचारों को बिना बहुत सरल भाषा में समझा देती हैं।
बिल्कुल। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि सिद्धांत क्या है, बल्कि ये दिखाती हैं कि ये विचार इंसानी जिंदगी से, उसकी जरूरतों से, उसके सवालों से कैसे जुड़े हैं। और उनका फोकस किसी एक धर्म पर नहीं रहता, वो हमेशा अलग अलग परंपराओं के बीच पुल बनाने की कोशिश करती हैं।
और वो ये भी मानती हैं कि ये धार्मिक परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये जिंदा हैं, बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं।
हाँ,
समय के साथ। और ईश्वर की समझ भी कोई अपवाद नहीं है।
बिल्कुल। और देखिए, यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है, उसका मुख्य तर्क। आर्मस्ट्रांग यही कहती हैं कि ईश्वर की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से एक दिन टपकी और बस वैसी ही बनी रही, बल्कि ये एक गतिशील चीज है, एक तरह से मानवीय रचना है।
मानवीय रचना? ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? मतलब क्या वो ये कह रही हैं कि ईश्वर सिर्फ इंसानी कल्पना है, उसका कोई वजूद ही नहीं?
नहीं नहीं देखिए, उनका पॉइंट ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, वो इस बहस में नहीं पड़ रही हैं।
अच्छा।
इंसानों ने ईश्वर को समझा कैसे है,
ओके,
सिरिश्ता कैसे बनाया है, और ये समझ वक्त के साथ कैसे कैसे बदली है।
ओके।
इसमें इतिहास का हाथ है, समाज का हाथ है, यहां तक कि हमारी साइकोलॉजी का भी। तो किताब का सवाल ये है कि इन तीनों बड़े एकेश्वरवादी धर्मों ने ईश्वर को समझने की जो कोशिश की वो कैसे की, और इस कोशिश की कहानी हमें आस्था के बारे में क्या सिखाती है।
अच्छा, तो मतलब ईश्वर की हमारी समझ, हमारी अवधारणा, वो मानवता की एक तरह की लगातार चलने वाली क्रिएटिव खोज है।
बिल्कुल।
ये दिलचस्प है।
हाँ।
और ये यात्रा, जैसा किताब बताती है, वो प्राचीन इसराइल के एक कबीलाई देवता से शुरू होती है और आज के दर्शन और रहस्यवाद की ऊंचाइयों तक जाती है।
बिल्कुल। तो चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आर्मस्ट्रांग ने दिखाया है, कहानी शुरू होती है प्राचीन इसराइल से।
हाँ, आर्मस्ट्रांग बताती हैं कि एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर का विचार,
हाँ,
वो एकदम से नहीं आ गया। ये एक लंबी, काफी उलझी हुई प्रक्रिया थी।
सही।
शुरू में इसराइलियों के जो देवता थे याहवे, वो कई दूसरे देवताओं में से एक थे। एक ताकतवर, कभी कभी गुस्सैल कबीले के युद्ध देवता। उनका मुख्य रोल क्या था? अपने लोगों की रक्षा करना, दुश्मनों से लड़ना।
उस जमाने में आसपास तो ज्यादातर सभ्यताएं बहुदेववादी थीं। बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते थे। इसराइलियों का उनसे टकराव भी चलता रहता था। आर्मस्ट्रांग बाइबल के टेक्स्ट का उदाहरण देकर दिखाती हैं कि कैसे धीरे धीरे शिफ्ट आया।
कैसे?
पहले जोर इस बात पर था कि भाई पूजा सिर्फ याहवे की करो, भले ही दूसरे देवताओं के होने को नकारा ना गया हो। इसे हेनोथिज्म कहते हैं, एक मुख्य देवता बाकी भी हैं।
अच्छा।
फिर धीरे धीरे ये विचार पक्का हुआ कि नहीं, याहवे ही एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब झूठ हैं।
और इस बदलाव में जो पैगंबर थे, जैसे यशाया, यर्मिया, उनकी भूमिका बहुत अहम थी, है ना?
बहुत ज्यादा।
जब इसराइल को हार मिलती थी या कोई मुसीबत आती थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा देवता कमजोर है।
हाँ,
आने वाला। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट था।
हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा मोड़ तब आया जब यहूदी सोच का सामना हुआ यूनानी दर्शन से, खासकर प्लेटो और अरस्तु के विचारों से।
अच्छा।
और इसका असर सिर्फ यहूदी धर्म पर नहीं, आगे चलकर ईसाई और इस्लाम धर्म की ईश्वर संबंधी सोच पर भी बहुत गहरा पड़ा।
हाँ, क्योंकि देखिए बाइबल का ईश्वर कैसा था? व्यक्तिगत, इतिहास में दखल देने वाला, गुस्सा करने वाला, प्यार करने वाला।
सही।
जबकि यूनानी दार्शनिक बात कर रहे थे एक अमूर्त, तर्कसंगत, कभी न बदलने वाले परम सत्य की, या पहला कारण या फर्स्ट कॉज की। तो सवाल उठा कि भाई इन दोनों को मिलाएं कैसे। तो फिलो जैसे विचारकों ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाइबल की कहानियों को आप सिर्फ कहानी की तरह मत पढ़ो, ये दार्शनिक सत्यों के रूपक हैं, एलेगोरी हैं।
यहीं पर आर्मस्ट्रांग दो तरह के ज्ञान की बात करती हैं, मिथोस और लोगोस। ये समझना जरूरी है।
हाँ बताइए।
मिथोस मतलब वो कहानियां, प्रतीक, रीति रिवाज जो हमें जिंदगी का मतलब देते हैं, हमें बताते हैं कि जीना कैसे चाहिए। ये दिल की भाषा है एक तरह से,
ठीक है।
और लोगोस है तर्क, तथ्य, वैज्ञानिक सोच, दिमाग की भाषा। आर्मस्ट्रांग कहती हैं कि धर्म का असली मैदान मिथोस है, लेकिन यूनानी दर्शन के असर से लोगोस का महत्व बहुत बढ़ गया।
अच्छा।
अब ईश्वर को तार्किक रूप से समझने, उसे डिफाइन करने का लक्ष्य सामने आ गया। इससे ईश्वर की समझ ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा दार्शनिक हो गई।
और इसी माहौल में फिर ईसाई धर्म का उदय हुआ, जिसने ईश्वर की समझ को एक और नया दिलचस्प मोड़ दिया, त्रित्व या ट्रिनिटी का सिद्धांत।
हाँ, यानी ईश्वर एक है लेकिन तीन रूपों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र यानी ईसा मसीह, और पवित्र आत्मा।
ये सुनने में थोड़ा गणित जैसा लगता है ना, एक में तीन, तीन में एक।
हाँ, लेकिन आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि इसे सिर्फ गणित की पहेली समझना ठीक नहीं, ये असल में एक नया मिथोस था।
कैसे?
ये ईसा मसीह के फॉलोअर्स के अनुभव को समझने का एक तरीका था। उनका मानना था कि ईश्वर सिर्फ दूर आसमान में नहीं बैठा, बल्कि वो इंसान बनकर उनके बीच आया, उसने दुख झेले। तो ट्रिनिटी का सिद्धांत ईश्वर की एकता और ईसा की दिव्यता दोनों को एक साथ रखने की कोशिश थी।
इसने ईश्वर को ज्यादा मानवीय, ज्यादा पहुंच में बना दिया, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन फिर सातवीं सदी आई और अरब में एक नई आवाज उठी, इस्लाम की।
और इस्लाम का जो केंद्रीय संदेश था वो था
तौहीद।
बिल्कुल, यानी ईश्वर की पूर्ण अखंड एकता, कोई बेटा नहीं, कोई साथी नहीं, बस एक।
इसे एक तरह से ईसाई त्रित्ववाद और उस समय अरब में जो बहुदेववाद था, दोनों के खिलाफ एक सुधार के तौर पर देखा गया।
हाँ, इस्लाम ने खुद को अब्राहम के असली शुद्ध अकेश्वरवाद की वापसी की तरह पेश किया। कहा कि अल्लाह कोई नया देवता नहीं है, ये वही ईश्वर है जिसे अब्राहम, मूसा और ईसा मानते थे। बस बाद में लोगों ने इसमें मिलावट कर दी थी, जिसे इस्लाम ने साफ किया।
और कुरान ईश्वर को परम परे भी बताता है, हमारी समझ से बाहर, लेकिन साथ ही शहरग से ज्यादा करीब भी।
सही। तो देखिए, इन तीनों धर्मों की अपनी अपनी समझ विकसित हुई। फिर आता है मध्य युग। यहां हमें ईश्वर तक पहुंचने के दो रास्ते और साफ दिखते हैं, एक दार्शनिकों का रास्ता, दूसरा रहस्यवादियों का।
हाँ, दार्शनिकों का रास्ता मतलब ईश्वर को तर्क से, बुद्धि से समझने की कोशिश। इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, यहूदी विचारक माइमोनाइड्स, मुस्लिम विचारक इब्न सीना और इब्न रुश्द, ईसाई विचारक थॉमस एक्विनास।
बिल्कुल, इन सब ने यूनानी तर्क का खूब इस्तेमाल किया, ईश्वर के होने को साबित करने के लिए तर्क गढ़े, उसके गुण बताए, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हमेशा रहने वाला है, बदलता नहीं है।
उनके लिए ईश्वर एक तरह की तार्किक जरूरत बन गया, ब्रह्मांड को चलाने वाला पहला कारण।
हाँ, लेकिन शायद ये बौद्धिक ईश्वर, ये तार्किक ईश्वर बहुतों के लिए थोड़ा सूखा, थोड़ा दूर कर रहा होगा। तो इसी के साथ साथ, या शायद इसकी प्रतिक्रिया में, रहस्यवादी धाराएं भी बहुत मजबूत हुई।
जैसे?
जैसे यहूदियों में कबाला, इस्लाम में सूफीवाद, रूमी और अलगजाली जैसे नाम हम सबने सुने।
हाँ।
और ईसाइयों में भी रहस्यवाद था, मिस्टर इकहार्ट जैसे लोग। इन सबका लक्ष्य ईश्वर को तर्क से समझना नहीं था।
तो क्या था
उनका लक्ष्य? था ईश्वर का सीधा अनुभव करना, उसे महसूस करना, उसे परिभाषाओं में बांधने के बजाय उसके साथ एक हो जाना।
और वो अक्सर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते थे जो थोड़ी अजीब लग सकती है, नकारात्मक ईश्वर मीमांसा या एपोफेटिक थियोलॉजी।
हाँ, मतलब ये बताना कि ईश्वर क्या नहीं है, क्योंकि वो हमारी समझ, हमारी भाषा से परे है। तो वो कहते थे ईश्वर कुछ नहीं है या अंधेरा है।
इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर है ही नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उसे किसी भी मानवीय कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता। वो हर परिभाषा से बड़ा है, तो जोर अनुभव पर था, सिद्धांत पर नहीं।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे तर्क और अनुभव, लोगोस और मीथोस, ये दोनों धाराएं साथ साथ चलती रहीं, कभी तनाव में, कभी संतुलन बनाने की कोशिश में।
सही, लेकिन फिर आया आधुनिक युग और समीकरण फिर बदलने लगे।
हाँ, पहले यूरोप में हुआ प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, लूथर, कैल्विन जैसे लोग, उन्होंने मध्ययुगीन दर्शन और कर्मकांडों को नकारा, कहा कि सीधा बाइबल पढ़ो, ईश्वर से सीधा रिश्ता बनाओ।
व्यक्तिगत आस्था पर जोर दिया।
हाँ, लेकिन बाइबल पर इतना जोर देने का और प्रिंटिंग प्रेस से वो सबके हाथ में पहुंचने का एक नतीजा ये भी हुआ कि उसकी ज्यादा शाब्दिक, कई बार कट्टर व्याख्याएं होने लगीं।
और विश्वास का मतलब भी बदलने लगा। पहले विश्वास का मतलब था भरोसा, समर्पण। अब धीरे धीरे ये हो गया कि कुछ खास सिद्धांतों को दिमागी तौर पर मानना।
इंटेलेक्चुअल एसेंट।
बिल्कुल। और फिर तो आई वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। न्यूटन, गैलीलियो, वोल्टेयर, इन्होंने तर्क और प्रयोग पर आधारित ज्ञान का एक नया तरीका पेश किया।
इसने तो धर्म को सीधी चुनौती दे दी।
हाँ, दुनिया को समझने के धार्मिक तरीकों पर सवाल उठने लगे। ईश्वर की भूमिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। कुछ लोगों ने उसे मान लिया डिवाइन वॉचमेकर, दिव्य घड़ी साज, जिसने दुनिया बना तो दी लेकिन अब उसमें दखल नहीं देता।
मतलब उसका एक्टिव रोल कम हो गया।
बिल्कुल। 19वीं और 20वीं सदी में यह प्रक्रिया और तेज हुई। नीचे ने तो कह ही दिया ईश्वर मर चुका है।
हाँ, जिसका मतलब था कि पश्चिमी संस्कृति के केंद्र से ईश्वर हट गया है।
सही। फिर फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि धर्म तो बस इंसानी जरूरत है या एक भ्रम है। फिर दो विश्व युद्ध हुए, होलोकॉस्ट हुआ। इन त्रासदियों ने सवाल खड़े कर दिए कि एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर कहाँ है।
ऐसा लगा कि ईश्वर का रोल या तो खत्म हो गया है या हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है।
तो क्या ये ईश्वर की कहानी का एंड था? आर्मस्ट्रांग कहती हैं नहीं।
अच्छा,
वो दिखाती हैं कि आधुनिकता के दबाव में जहां एक तरफ नास्तिकता बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ हर धर्म में कट्टरपंथी आंदोलन भी खड़े हुए,
जो आधुनिकता को ही दुश्मन मानते हैं।
ये भी एक प्रतिक्रिया थी।
बिल्कुल।
लेकिन साथ ही रहस्यमय और आध्यात्मिक परंपराओं में भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है, शायद इसलिए कि विज्ञान जिंदगी के हर सवाल का जवाब नहीं देता।
हाँ, अर्थ का सवाल, मकसद का सवाल।
सही। तो ईश्वर की अवधारणा का विकास शायद अब भी जारी है। उसका रोल, उसका लक्ष्य शायद फिर से तय हो रहा है।
ये पूरी यात्रा वाकई दिमाग को झकझोर देती है। अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें, कुछ संदेश निकालना चाहें, तो पहला तो शायद यही होगा कि ईश्वर की अवधारणा कोई फिक्स चीज नहीं है, ये बदली है, विकसित हुई है।
बिल्कुल। मानवीय हालात, जरूरतें, ज्ञान, जैसे जैसे ये बदले, ईश्वर की समझ भी बदलती गई।
एक कबीले के रक्षक देवता से लेकर ब्रह्मांड के नैतिक शासक तक, फिर दार्शनिक परम सत्य और फिर रहस्यमय अनुभव की वो खामोश सच्चाई, कितने रूप बदले हैं ईश्वर की समझ ने।
हाँ, ये दिखाता है कि ईश्वर शब्द का मतलब भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। उसका रोल समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बदलता रहा है।
दूसरी अहम बात शायद ये है कि अर्थ बनाना, मीनिंग मेकिंग, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। आर्मस्ट्रांग ये नहीं कह रही कि ईश्वर सिर्फ कल्पना है, लेकिन वो जोर देती हैं कि ईश्वर के बारे में हमारी सारी समझ, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी साइकोलॉजी, इन सबसे रंगी होती है।
हाँ।
हम ईश्वर को वैसे ही समझ पाते हैं जैसे हमारे पास समझने के औजार होते हैं। ये धार्मिक अनुभव को छोटा नहीं करता, बल्कि उसकी रचनात्मकता को दिखाता है।
तीसरा, विविधता के नीचे छिपी एकता। ये किताब बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि ये तीनों अब्राहम धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, इनकी जड़ें कितनी साझा हैं।
हाँ,
उनकी चिंताएं अक्सर एक जैसी रही हैं। उन्होंने मिलती जुलती समस्याओं के कई बार समानांतर हल खोजे हैं, एक दूसरे से सीखा है, प्रभावित हुए हैं।
भारत जैसे देश के लिए यह समझना कितना जरूरी है, जहां इतने धर्म साथ रहते हैं, कि ऊपरी मतभेदों के नीचे गहरे रिश्ते हो सकते हैं।
बिल्कुल। चौथा पॉइंट, तर्क और आस्था, या लोगोस और मिथोस, इनके बीच संतुलन का महत्व। इतिहास के बड़े धर्मशास्त्रियों ने हमेशा कोशिश की है कि इन दोनों को साधा जाए। आर्मस्ट्रांग इशारा करती हैं कि शायद आधुनिक पश्चिम ने लोगोस यानी तर्क और विज्ञान पर इतना ज्यादा जोर दे दिया है कि मिथोस मतलब अर्थ, प्रतीक, जीवन को दिशा देने वाली कहानियां, इसका महत्व कम हो गया है और इससे एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो सकता है।
और पांचवा, शायद रहस्यमय बनाम सैद्धांतिक धर्म की भूमिका, वो आध्यात्मिक रास्ते जो ईश्वर के सीधे अनुभव पर जोर देते हैं, वो अक्सर धर्म के बाहरी ढांचे, नियमों, सिद्धांतों के लिए एक बैलेंस का काम करते हैं।
सही, वो याद दिलाते हैं कि धर्म का लक्ष्य सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि एक गहरे अंदरूनी अनुभव तक पहुंचना भी है।
इस किताब में वाकई कई ऐसे विचार हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ पर अगर बात करें, एक जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा वो ये था, जैसा आपने पहले भी कहा, ईश्वर आखिरकार रचनात्मक मानवीय कल्पना का ही उत्पाद है। ये एक प्रतीक है जिसे हमने खुद बनाया है और लगातार बेहतर करते रहते हैं।
हाँ।
इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर सच नहीं, बल्कि ये कि ईश्वर तक हमारा रास्ता मानवीय है, हमारी रचना है।
बिल्कुल, और विश्वास के बदलते मतलब पर उनका कहना भी बहुत जरूरी है। आधुनिक युग से पहले विश्वास का मतलब मुख्य रूप से किसी बात पर दिमागी सहमति जताना नहीं था, इसका मतलब था भरोसा, निष्ठा, प्रतिबद्धता।
हाँ, आजकल हम विश्वास को किसी फैक्ट की तरह साबित करने लगते हैं, सही या गलत,
जबकि पहले ये एक रिश्ते जैसा था, एक समर्पण। इस बदलाव ने ही शायद आज के कई संघर्षों को जन्म दिया है, आस्था बनाम तर्क वाले।
और रहस्यवादियों के बारे में उनकी ये बात भी सोचने लायक है, तीनों धर्मों के रहस्यवादी जब वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा से लौटे तो वे सभी एकता, स्व के मिट जाने और शब्दों से परे एक सच्चाई की एक जैसी भाषा बोलते दिखे। ये दिखाता है कि गहरे लेवल पर अलग अलग रास्ते भी एक जैसे अनुभव तक ले जा सकते हैं, शायद मंजिल या लक्ष्य एक ही है।
और एक विचार जो व्यक्तिगत अनुभव पर बहुत जोर देता है, हर एकेश्वरवादी का ईश्वर के बारे में एक अनूठा और व्यक्तिगत विचार होता है। धर्म के जो आधिकारिक सिद्धांत हैं, वो इस बेहद निजी प्रक्रिया को बस दिशा देने की एक कोशिश है।
ये धर्म के अंदर की विविधता और निजी आस्था के महत्व को दिखाता है।
हाँ,
तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक, हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो अंतरधार्मिक संवाद में मदद मिल सकती है। अगर हम समझें कि अलग अलग धर्मों की ईश्वर की समझ कैसे बनी, उनकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, तो शायद हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा सम्मान रख पाएं, पूर्वाग्रह कम हो।
बिल्कुल, भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है।
हाँ, और अपने निजी स्तर पर भी ये हमें अपनी आस्था, या अगर आस्था नहीं है तो अनास्था, उसके प्रति ज्यादा मैच्योर रवैया अपनाने में मदद कर सकता है। ये समझना कि ईश्वर की समझ बदली है, ये हमें कट्टर होने से बचा सकता है।
हम अपनी परंपरा को समझ सकते हैं, लेकिन दूसरों के रास्तों के लिए भी खुले रह सकते हैं।
सही कहा, ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है कि भाई, किसी एक विचार ने ईश्वर पर आखिरी शब्द नहीं कह दिया है। हर समझ मानवीय है, अधूरी है। इससे दूसरों के नजरिए का सम्मान करना आसान हो जाता है,
और ये हमें आज के धार्मिक संघर्षों को भी बेहतर समझने में मदद करता है, जैसे कट्टरवाद।
ये अक्सर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों की प्रतिक्रियाएं होते हैं।
हाँ, न कि किसी पुराने, न बदलने वाले सच की अभिव्यक्ति। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें धर्म की भूमिका पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि शायद धर्म का असली रोल दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या करना नहीं है, बल्कि जीवन को अर्थ देना, नैतिकता सिखाना, हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ना, यानी मिथोस की जरूरत पूरी करना।
बिल्कुल सही। तो इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या रहा आपके लिए?
मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर की खोज एक कभी न खत्म होने वाली बहुत ही क्रिएटिव और गहरी मानवीय यात्रा है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ये तीनों बड़े एकेश्वरवादी धर्म, जिन्हें हम अक्सर दुश्मन की तरह देखते हैं, वो कितने गहरे में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं।
और मेरे लिए सबसे टिकाऊ ख्याल ये है कि एक परिपक्व आस्था के लिए शायद दोनों चीजें चाहिए, अपनी परंपरा का सम्मान, उसके ज्ञान को समझना, और साथ ही लगातार सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना। ये किताब सवाल को क्या ईश्वर है इसे हटाकर इस पर लाती है कि इंसानों के लिए ईश्वर का मतलब क्या रहा है, इस विचार ने उनकी जिंदगी में क्या भूमिका निभाई है, और ये उनकी किस खोज का हिस्सा रहा है। ये ईश्वर की अवधारणा को मानवता की सबसे गहरी और स्थायी बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक के रूप में पेश करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।